ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्र निर्माण के अभियान में एकताबद्ध होकर आगे बढ़ने का देशवासियों से किया आग्रह। कांग्रेस के सभापति देवबा ने सरकार पर संघीयता को कमजोर करने की कोशिश कर लगाया आरोप। प्रदेश कानून निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के निष्कर्ष के साथ ही संपन्न हुई अंतर प्रदेश गोष्ठी और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुई कार बम विस्फोट में 76 से अधिक की हुई मौत और कई हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सभी देशवासियों का अब एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में लगने का समय आ गया है। प्रेस संगठन नेपाल के नवनियुक्त कार्य समिति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वर्तमान समय में जात जाति धर्म और भूगोल के नाम पर आंदोलन करने का औचित्य नहीं है, इसीलिए राष्ट्र निर्माण के अभियान में एकताबद्ध होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने संचार कर्मियों से सुशासन कायम करते हुए सामाजिक न्याय के मद्देनजर सत्य तथ्यों को उजागर करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि ठंड से प्रभावित गांव बस्तियों में कंबल एवं गर्म कपड़ों का इंतजाम किया गया है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोत का समुचित परिचालन किए जाने पर युवाओं को स्वदेश में ही रोजगारी की व्यवस्था की जा सकेगी। मौके पर पत्रकारिता में सक्रिय विभिन्न पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इनमें हृदय चंद्र सिंह, निर्मला शर्मा, प्रमोद दहाल, वीरेंद्र कुमार शाह, राजू अधिकारी, बसंत प्रताप सिंह, सुरेंद्र पैकुरेल, डेकेंद्र थापा, सुशील अरियाल, दीपक रिजाल, मीना बुराथोकी, पद्म लक्ष्मी, सावित्री बसनेत, दमन राय, यूनिक फिफा धिसिंह और रवीना बोहरा शामिल हैं। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस का एकजुट होना अपरिहार्य है। धनुषा के सबैला में प्रजातंत्र सेनानी बलराम नायक की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सभापति देउबा ने सरकार को प्रजातंत्र का विरोधी बताते हुए कहा कि अभी विभिन्न तरह के बहानेबाजी में संघीयता को कमजोर बनाने का खेल हो रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस के उपसभापति विमलेंद्र निधि ने वर्तमान सरकार पर सर्वसत्तावाद और अधिनायकवाद उन्मुख होने का आरोप लगाया। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराय ने कहा कि नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सफल बनाने के लिए सभी के साथ और सहयोग की आवश्यकता है। आज पोखरा में बुलाए गए प्रेस मीट के दौरान मंत्री भट्टराय ने विश्वास जताया कि विजिट नेपाल देश के समूचे पर्यटन क्षेत्र के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये बताते हुए कि भ्रमण वर्ष को प्रभावकारी बनाने के लिए विदेशों में मौजूद कूटनीतिक नियोगों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित हैं और देश में पर्यटन प्रवर्धन के काम भी उतनी ही तेजी से हो रहे हैं। आज ही पर्यटन मंत्री पोखरा भी गए, जहां उन्होंने निर्माणाधीन पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल का निरीक्षण कर कार्य प्रगति के बारे में जानकारी ली। समझौते के तहत विमानस्थल को सन 2021 की जुलाई 10 तारीख को तैयार होना है, जबकि अब तक 54% काम पूरे हुए हैं। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के शुभारंभ होने वाले दिन पुष 16 गते यानी 1 जनवरी को कैलाली की धनगढ़ी में उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी की गई है। सुदूर पश्चिम प्रदेश स्तरीय पर्यटन प्रवर्धन समिति की बैठक के निर्णय के मुताबिक नेपाल भ्रमण वर्ष शुभारंभ तिथि 1 जनवरी को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी की गई है। ये जानकारी प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय ने दी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ के थाहैन, नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिरख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सभी 7 प्रदेशों में कानून बनाने और सुरक्षा व्यवस्था को और भी दुरुस्त कराने लगायत 10 सूत्रीय निष्कर्ष के साथ कानून तथा सुरक्षा संबंधी अंतर प्रदेश आदान प्रदान गोष्ठी आज संपन्न हुई है। आज गोष्ठी के बाद विराटनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये जानकारी साझा की गई। प्रदेश नंबर 1 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के आयोजन में हुई इस गोष्ठी में सभी 7 प्रदेशों के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री सहभागी थे। विपद जोखिम पूर्व तैयारी के लिए सलियान जिले के स्थानीय तहों में हेलीपैड निर्माण का काम शुरू हुआ है। सलियान जिले में स्थित 3 नगर पालिकाओं में 2-2 और 7 गांव पालिकाओं में 1-1 समेत कुल 13 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। इमरजेंसी मरीजों और दुर्घटना के घायलों के तत्काल उद्धार और आपदा व्यवस्थापन के मद्देनजर हेलीपैडों का निर्माण किया गया है। हुमला जिले की सभी 7 गांव पालिकाओं की स्वास्थ्य चौकियों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बीते मार्च इस महीने के आखिरी हफ्ते में हुई भारी बर्फबारी के कारण स्वास्थ्य चौकियों में दैनिक 45 से 50 मरीज इलाज के लिए आते हैं। ये बात जिला अस्पताल के अहेव नर भंडारी ने बताई। स्वास्थ्य चौकी में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों में बुखार, सरदर्द, हाथ पैरों में झंझनाहट जैसी समस्याएं होती हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में शनिवार की सुबह हुई कार बम विस्फोट में 76 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मोगादिशु के मेयर उमर मोहम्मद ने घटना की पुष्टि की है। अभी तक किसी भी समूह ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। विस्फोट के पीड़ितों में 17 पुलिस अधिकारी, 4 विदेशी नागरिक शामिल हैं। ये बम विस्फोट शहर के टैक्स ऑफिस के पास हुआ है। बता दें कि सोमालिया 1991 के बाद से एक हिंसक संघर्ष में उलझा हुआ है और अलकायदा से संबद्ध अल शबाब समूह द्वारा किए गए बम हमलों से नियमित रूप से परेशान है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 14.5 और न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्र निर्माण के अभियान में एकताबद्ध होकर आगे बढ़ने का देशवासियों से किया आग्रह। कांग्रेस के सभापति ड्योबा ने सरकार पर संघीयता को कमजोर करने की कोशिश का लगाया आरोप। प्रदेश कानून निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के निष्कर्ष के साथ ही संपन्न हुई अंतर प्रदेश गोष्ठी और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुई कार बम विस्फोट में 76 से अधिक की हुई मौत और कई हुए घायल। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।